विद्युत, आपको संयुक्त राष्ट्र के युवा पृथ्वी चैंपियन के रूप में मान्यता मिली है। पर्यावरण से संबंधित जिस कार्य के लिए आपको यह सम्मान मिला है उसके बारे में विस्तार से बताइए।
हमने एक मशीन बनाई है जो लो कॉस्ट है, स्मॉल स्केल है, और जो खेत में खेती करने के बाद, फसल कटने के बाद जो खेत में अवशेष बच जाते हैं वो उसको इस्तेमाल करके उनको एक कार्बन रिच फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसको फिर अलग अलग उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे ईंधन बन सकता है, उससे फर्टिलाइजर बन सकता है, और उससे अनेक प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल बन सकते हैं जैसे एक्टिवेटेड कार्बन। और इस हमारी तकनीक से बायोमास के ओपन बर्निंग के कंपैरिजन में 95% ऑफ स्मोक एलिमिनेट हो जाता है। तो इससे इन कूड़े ककड़ और खेत के अवशेष के जलाने से जो प्रदूषण होता है उससे भी इसका समाधान हो सकता है।
तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई विद्युत?
दुनिया में करीब $120 बिलियन की कीमत के बायोमास रेजिड्यूज जो होते हैं उनको जला दिए जाते हैं, और पर इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी ये सॉल्यूशन स्केल नहीं हो रहा है। तो एज अ इंजीनियर मैं ये जानना चाहता था क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है, बात यह है कि मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा परिवार भी दिल्ली से ही है, और प्रदूषण हमें खुद इम्पैक्ट करता है, और हम ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि सर्दियों के महीने में पराली जलाने से यहाँ पे कैसे प्रदूषण में स्पाइक होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को रख के, इन दोनों रीजंस के कारण मैं इस फील्ड में उतरा और 2013 से इसमें मैं काम कर रहा हूँ।
तो आपकी कंपनी का नाम है टकाचार, ये शुरू करने का विचार कब मन में आया और क्या इस सफर के दौरान किसी तरह की चुनौतियां भी सामने आई?
2018 में जब मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा था, और उसी समय मैं इस आइडिया को भी देख रहा था कि कैसे मैं इसको आगे बढ़ा सकूं और कैसे इसको मैं और बढ़ावा दे सकूं, लेकिन कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी समय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था स्मार्ट 50, करीब 17,000 स्टार्टअप्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने अप्लाई किया था। उसमें हम जीते थे, हमें टॉप 3 विनर्स में मोस्ट इनोवेटिव अवार्ड मिला था। तो मुझे और मेरे को फाउंडर को लगा कि ये मौका अच्छा है कि हम इसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला वहां से, और इसलिए 2018 में हम दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और इसको हम फुल टाइम इस पे काम करने लगे।
तो अब आगे भविष्य की क्या योजना है, इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए आगे क्या सोचा है?
तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक्सपर्टीज तो मशीन में है, और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया इतना बड़ा देश है और इतना डाइवर्सिटी है कि हम अपने आप सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम ग्राउंड में जो किसानों के साथ काम करते हैं, जैसे किसानों के संस्था हो गए, फार्मर ग्रुप हो गए, या फिर कृषि उद्योग हो गए जैसे राइस मिल हो गए, कोकोनट ऑयल मिल हो गए, उनके साथ हम पार्टनर करके मशीन की डिप्लॉयमेंट करेंगे और उन्हीं के थ्रू उसका हम उनको किसानों तक पहुंचाएंगे।
लेकिन विद्युत, देखा गया है कि इस तरह की चीजें बनती हैं और उनका उनकी अपस्केलिंग नहीं हो पाती है, तो ये केवल एक अन्वेषण न बनकर रह जाए बल्कि वाकई जमीनी स्थिति में बदलाव लाया जा सके, इसके लिए खासतौर पर किसानों का व्यवहार परिवर्तन भी इसका एक बड़ा आयाम होगा। सो इस सब के लिए कुछ सोचा है कि किस तरह इसे एक बड़े स्केल पर आप अमल में ला सकें?
तो अगर आप इसमें सोचेंगे कि इन क्रॉप रेजिड्यूज को, या ये जो खेत में जो अवशेष बच जाते हैं क्यों जलाए जाते हैं, ये किसान इनको इसलिए जलाते हैं क्योंकि इनको इनके लिए वैल्यू नहीं दिखता है, और उनको इनको खेत खाली करना होता है अगले फसल को उगाने के लिए, तो इसको ये जला देते हैं। लेकिन अगर इनसे वैल्यू क्रिएशन किया जाए, एक इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ से ये वेस्ट से वैल्यू बन सके और किसानों को इन अवशेषों के लिए उनकी कीमत मिले, तो इसको जलाएंगे नहीं और वो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। ये हमारा मानना है, और हमने कई बार देखा है छोटे छोटे पायलट्स जो हमने किए हैं, किसानों को सही कीमत मिले अपने वेस्ट के लिए तो जरूर इसको जलाएंगे नहीं, और वो जरूर प्रोडक्टिव यूज के लिए ही जाएगा। हमारा सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हम पाइन नीडल्स यानी पिरूल के साथ पायलट कर रहे थे। गर्मी के सीजन में चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनसे जो पाइन नीडल जमीन पे गिरते हैं उनसे बहुत जंगल के आग फैलते हैं, और क्योंकि वहाँ मोनोकल्चर फॉरेस्ट है तो वो आग और तेजी से फैलते हैं, तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है, पोल्यूशन भी होता है, गांव वालों के लिए भी डेंजर है। हमने वहाँ पे एक गांव में अपनी अर्लियर मशीन का अर्लियर वर्जन उसको वहाँ पे लगाया था, और वहाँ पे गांव के महिलाओं के साथ हमने पायलट किया था। महिलाओं ने वहां पे लोकली जो भी पिरूल का जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया और हमें बेचा। हमने उनको उसके पूरे पैसे दिए और उस मशीन से जो भी कार्बन रिच मटेरियल भेजा बना उससे हमने ईंधन बना के आसपास के ढाबों को बेचा। उस पीरियड में महिलाओं का इनकम डबल हो गया था जब वो हमारे साथ काम कर रहे थे। इसका हमें इम्पैक्ट पता चला बहुत कि इसमें किसानों का और गांव में रहने वाले लोगों का इनकम बढ़ सकता है, उसके साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो सकता है। उसी पायलट से फिर बाकी हमारा सब कुछ शुरुआत हुआ कि ये हमें देखना चाहिए कि इसमें बाद और क्या क्या बायोमास को हम इंक्लूड कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक मशीन बना सकते हैं।
तो अगले 5 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए क्या योजना है, क्या करना चाहेंगे, किस तरह से इसे बढ़ाना चाहेंगे और प्रदूषण की समस्या को, खासतौर से दिल्ली के आसपास जो बड़ी समस्या है, इसको किस तरह हल करना चाहेंगे?
अगले 10 सालों में तो हम इसको बड़े पैमाने पे स्केल करना चाहेंगे, अलग अलग टाइप के बायोमास के साथ काम करना चाहेंगे। पैडी स्ट्रॉ तो हो ही गया, राइस हस्क हो गया, कोकोनट शेल हो गया, इन सबको इस्तेमाल कर करके अलग अलग प्रोडक्ट्स का हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, एक मार्केट प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं और हमारा जो टेक्नोलॉजी होगा वो उसमें एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा किसान उसको डायरेक्ट उस मार्केट से बेच सकते हैं। तो कोकोनट शेल से जैसे कि हम एक्टिवेटेड कार्बन इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन करने के काम कर रहे हैं। राइस हस्क और पैडी स्ट्रॉ से हम फर्टिलाइजर बनाने का अभी हमारा रिसर्च चल रहा है, डायरेक्टली कैसे गांव में ही फर्टिलाइजर बन सके और जो अभी बाहर से हम इतना यूरिया और पोटैश इंपोर्ट करते हैं कैसे उसको हम घटा सके। ईंधन भी इससे बन सकता है और पावर प्लांट्स में इस्तेमाल हो सकता है। तो हम चाहते हैं अगले 5 सालों में करीब 500 सिस्टम हम डेफिनेटली इंडिया में डिप्लॉय करना चाहते हैं और अगले 10 सालों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मल्टीपल थाउजेंड सिस्टम्स इंडिया में डिप्लॉय करना चाहते हैं। और यही नहीं, इंडिया के बाहर भी हमारा एक पायलट केन्या में भी प्लांट है। तो इंडिया और विश्व भर में हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं और 2030 तक करीब 100 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस हम मिटिगेट करना चाहते हैं इसके द्वारा।
संयुक्त राष्ट्र का ये जो पुरस्कार है ये आपके लिए क्या मायने रखता है? युवा चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में आगे आप अपनी भूमिका किस तरह देख रहे हैं?
ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आगे मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में एक क्लीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण का एक इनोवेशन लैंडस्केप बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं, जिसमें ताकि वो ऐसा एक लैंडस्केप और इकोसिस्टम बने जिसमें जिससे लोग आए इस एरिया में इनोवेशन करें, अलग अलग चीजें इन्वेंट करें और नए उपाय निकालें और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो ताकि कोई भी आके इसमें इस एरिया में काम कर सके। तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड डेफिनेटली एक स्टेपिंग स्टोन है उस डायरेक्शन में आगे जाने के लिए।